आज के 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आप सबका स्वागत है और आप सबका बहुत धन्यवाद है। मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे आपके बीच में बुलाया इस पवित्र दिवस पर। केवल भाग्यवान लोगों को ही कार्तिक महीने का लाभ की जानकारी प्राप्त होती है। हा? अभी सब लोग जब बंद कर दीजिए, हाँ अभी केवल कथा सुनिए, क्योंकि कार्तिक का व्रत जो है वो सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। कार्तिक का व्रत जो करता है उस व्यक्ति के शरीर में सारे देवताएं निवास करते हैं और देवताएं उनका संग प्राप्त करते हैं, संग प्राप्त करना चाहते हैं। कार्तिक का व्रत जब हम करते हैं तो तब बाकी सारे व्रतों का लाभ मिलता है, फल प्राप्त होता है। और जो कार्तिक का व्रत नहीं करता है उसे पहले किए हुए किसी भी व्रत का लाभ नहीं मिलता है। और जो कार्तिक का व्रत नहीं करता है उसे भगवान त्याग कर नरक भेज देते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण है। अब ये सब कहने की बातें भगवान इसलिए नहीं कह रहे कि उनको सब लोग को डरा धमका के नरक में भेजना है, कम से कम नरक का डर सुनकर लोग व्रत तो करेंगे ना, ये भाव है भगवान का। भगवान कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ये भगवान स्वयं सत्यभामा को बता रहे हैं पद्म पुराण में कार्तिक के व्रत का महात्म्य। हाँ पद्म पुराण में भी है। तो आज वो व्रत शुरू हो रहा है। पूर्णिमा का चंद्र जो है वो श्री कृष्ण भगवान और गोपियों को लालायित करता है प्रेम के लिए, और इस दिन भगवान रास रचाते हैं, प्रथम रास, शरद रास, शरद पूर्णिमा, शारदीय रास कहते हैं उसको। और इसी दिन से ये कार्तिक महीने का आरंभ होता है। ये कार्तिक महीना जो है इसे दामोदर मास कहते हैं। बाहर से ये दामोदर मास है, अंदर से ये ऊर्जेश्वरी मास है। ऊर्जेश्वरी यानी राधा रानी का एक सुंदर नाम है ऊर्जेश्वरी, बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग रखते भी हैं, लेकिन अतिशय उत्कृष्ट नाम है राधा रानी का ऊर्जेश्वरी। ये इनका महीना है। और जो भी दामोदर भगवान के लिए व्रत करते हैं उन व्रतों को फल जो है वो ऊर्जेश्वरी राधा रानी देती है। और वो घुमा फिरा के जितने भी व्रत हैं, जितने भी बताए गए हैं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो सबका अंतिम परिणाम राधा रानी सबको क्या देती है, वो सबको शुद्ध भक्ति देती है, प्रेम भक्ति। और इस जीवन में जीवन को चलाते हुए शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और इस जीवन के अंत में राधा रानी कार्तिक व्रत करने वाले सब व्यक्तियों को वैकुंठ में, गोलोक धाम में प्रवेश देती है। इस महीने में आप जो भी कुछ करेंगे उसका, ये करेंगे तो उसका फल क्या होगा, ये करेंगे तो उसका फल क्या होगा, ये सबका अंजाम एक ही है, प्रेम भक्ति प्राप्ति और जीवन के अंत में गौलोक प्राप्ति। इतना आसान कैसे हो गया? देवताओं के व्रत में कितने कठोर नियम पालन करते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, कितने नियम पालन करने पड़ते हैं, बहुत कष्ट होता है। कभी कुछ गलती हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। पाँच ही नारियल चाहिए, तीन ही पत्ते चाहिए, 11 ही फूल चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। और दुर्भाग्य से उन फूलों को वो खुशबू आती नहीं है, और लिखा है सुगंधी फूल होने चाहिए। सुगंधी फूल आप ऐसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मेटिकुलस यानी बहुत तांत्रिक चीज़ें हैं उसके अंदर, तंत्र दृष्टि से बहुत मुश्किल बातें हैं। लेकिन कार्तिक महीना जो है वो साल भर के 12 महीने में चतुर्मास जो होता है, उस चतुर्मास में भी सबसे श्रेष्ठ महीना है। और इसमें भगवान, जैसे हम लोग दिवाली में देखते हैं ना सेल लगाते हैं सब जगह पे, हाँ दो ले लो तो चार मिलेंगे, और एक ले कर दो मिलेंगे, एक ले है तो तीन मिलेंगे। मैंने अभी पढ़ा था एक जगह पर, तीन ले लो 7 मिलेंगे, और 3 और 7 10 मिलेंगे तो अपना दुकान खोल देना। तो ये क्या हो गया, सेल, मतलब बहुत कम दाम में बहुत ज़्यादा लाभ। उसी तरह से कार्तिक महीने में भगवान जो है बहुत ही कम कष्ट करने से बहुत ही ज़्यादा, हाँ जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका, दुगना है तिगना, अनंत गुना लाभ देते हैं थोड़ा सा कुछ करने से। इसलिए हमको सब लोगों को कुछ ना कुछ छोटा सा क्यों ना हो जो मुमकिन है 30 दिन जिसको पूरा कर सकते हैं जिसमें बाधा नहीं आएगी इतना सा करने में, ऐसा व्रत आपको लेना चाहिए। जानबूझ के मुश्किल व्रत मत लेना, क्योंकि मुश्किल व्रत लेंगे और उसको कर नहीं पाएंगे तो व्रत भंग हो जाएगा आपका। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि आसान व्रत लेना। जैसे आप 16 माला कर रहे हो, कहना कि मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूँगा, वो तो ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा 15 मिनट जल्दी उठेंगे तो 1 माला अपने आप एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर एक भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे दिन में, बहुत आसान है, 10 मिनट का काम है। या तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ेंगे तात्पर्य के साथ और चिंतन करेंगे उसके ऊपर। एक दीपक कम से कम भगवान को दिन में लगाएंगे, हो सके तो 2 बार लगाएंगे, घी का दीपक हाँ भगवान दामोदर को लगाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे व्रत, छोटे से व्रत। 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक विधि व्रत होते हैं, एक निषेध व्रत होते हैं। निषेध व्रत का मतलब है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा इस महीने में, या मुझे जो पसंद है समोसा शायद मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह के जो निषेध, मतलब नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, सुबह देर तक नहीं सोऊंगा, इस प्रकार के व्रत को निषेध व्रत कहते हैं। और विधि व्रत का मतलब क्या है, मैं 1 माला एक्स्ट्रा जप करूंगा, मैं 1 श्लोक भगवद गीता का पढ़ूंगा, दिन में 1 बार दामोदर अष्टकम गाऊंगा, 1 दीपक भगवान को अर्पण करूंगा, या मंदिर में जाके रोज 1 बार झाड़ू लगाऊंगा। इस तरह के जो काम है इसको विधि यानी करना है आपको, पॉजिटिव डूज, और एक होता है डोंट्स। तो बेहतर ये होगा कि हम विधि व्रत लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे लोग कभी कार्तिक में मैंने देखा है आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कुल्फी नहीं खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे, फिर उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमको क्या होता है, समझो अभी हमको मीठा बहुत प्रिय है, हमने कहा कि इस महीने मीठा नहीं खाएंगे, और बार बार मीठे पर ही मन तुम्हारा घूमता रहेगा, मुझे मीठा नहीं खाना है, अरे मीठा नहीं खाना है, अरे कोई पार्टी में जाएंगे, भोजन में जाएंगे, प्रसाद में जाएंगे, नहीं नहीं मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे मीठा नहीं खाना है, और बार बार उसके ऊपर चिंतन करेंगे नहीं खाना है नहीं खाना है, कितना अच्छा होता खाने को मिलता, और वेट करेंगे 30 दिन कब समाप्त हो जाएंगे, जब कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी अगले दिन मैं टूट पड़ूंगा सारे मिठाइयों पर, है ना। इसको व्रत नहीं कहते हैं, व्रत जो है ना दिल से सुखा हुआ मतलब आनंद से किया जाता है, विश्वास जिसका हमको कन्विक्शन है कि जो करना है मुझे, स्वेच्छा से किया गया, आनंद पूर्वक किया गया। भगवान को भी कष्ट पूर्वक किया गया, ज्यादा व्रत करने से आनंद नहीं आता है, तड़प रहे हम लोग, लेकिन नहीं नहीं बुला है किसी को हमने वादा किया है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसलिए जो भी आप करेंगे, अगर मीठा छोड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन दिल से आनंद से, कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। कष्ट होना क्यों नहीं चाहिए, कष्ट होने से लाभ होता है, लेकिन कष्ट क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी, हमको कष्ट हो गया तो हमारा व्रत टूट सकता है। तो पता है क्या होता है, कभी कभी रात को नींद में हम सपने में उठते हैं, उठ के फ्रिज के पास जाते हैं और फ्रिज खोल के मीठा खा लेते हैं, पता ही नहीं हमको कुछ। पत्नी कहती है कहाँ गया मीठा हो, मैंने मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, नोबडी नोज, ओनली कृष्णा नोज। क्योंकि मन का जो होता ना वेग, वो अगर दिन में दबाएंगे तो सपन में वो जग जाता है पूरा। इसलिए बेहतर यह है कि आप कुछ करने का व्रत लेना, उससे आपके वो गतिविधि जो है वो आपको आपकी इंद्रियों को उसमें काम में लगाएगी और पवित्र कर देगी। इतना सा व्रत करने पर भी आप भगवान दामोदर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस व्रत में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सातत्य यानी कंटिन्यूटी, रोज होना है वो, हाँ संडे को छुट्टी लेना नहीं है उसके अंदर। 30 दिन आज से शुरू करेंगे तो 30वें दिन तक आपको रोज करना है, में खंड नहीं पड़ना चाहिए, और हृदय से और भक्ति भाव से करना है। जैसे कि आपको दीपक कभी सब लोगों को रेडी दीपक भिगो के कपूर में डुबा के प्रज्वलित करके दिया गया है ना, तो आपका क्या लगा उसके अंदर, कुछ भी लगा नहीं। लेकिन आपका क्या लगेगा उसके अंदर, आपका भाव और भक्ति, वो भगवान को उसमें कितना 1 ml घी लगा है कि 5 ml लगा है कि 15 ml लगा है, कितनी बड़ी बाती बनाई है, कितना सुंदर पंडती है, इस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, प्रेम और भक्ति और भाव से हृदय से उनको हम दीपक अर्पण करते हैं तो उससे वो रिझ जाते हैं। उनका मन रिझता है उसके ऊपर। दामोदर महीना जो है वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए है। ज़्यादा ध्यान अपने व्रत पर नहीं करना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने पांच चीज़ ले ली है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ध्यान जो है वो ठाकुर जी को रिझाने में लगना चाहिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुझे इनको बताना है देखो मैंने कितना कठिन व्रत पूरा किया, 30 दिन तक अखंड व्रत पूरा किया। ये इनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है, मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। वो हमारा और ठाकुर जी के बीच का एक रिश्ता है, हमारे बीच का वो प्राइवेट वादा है, और वो केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए करना है। मैं अगर मीठा छोड़ भी रहा हूँ तो आपके आनंद के लिए, मैं अगर जमीन पर भी सो रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर उठ कर अगर ठंडे पानी से स्नान कर रहा हूँ आपका नाम लेके, तो भी आपके आनंद के लिए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मेरे गर्व को घमंड को बढ़ाने के लिए मैं व्रत नहीं करना चाहता। अगर व्रत करने से घमंड बढ़ता है वहीं आपका व्रत भंग हो गया। व्रत करने से नम्रता आनी चाहिए, सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए। नम्रता के पार्श्वभूमि पर व्रत लेना चाहिए और नम्रता से व्रत को निभाना चाहिए और ठाकुर जी को प्रसन्नता करने का, प्रसन्न करने का लक्ष्य होना चाहिए, तो आपका जो कार्तिक व्रत है वो सफल है। एक दीपक प्रेम से भगवान को दान करने से, चढ़ाने से, करोड़ों करोड़ों कल्पों में जितने आप पाप नहीं कर सकते हैं वो सब एक ही दीपक के सामने जल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। एक कल्प जो है चार युग का होता है, 43,20,000 साल का होता है। ऐसे करोड़ों साइकिल जब होते ना, उतने हम दिलो जान से भी जितना कोशिश करेंगे पाप करने के लिए, और जितने पाप होंगे वो सारे उससे भी ज़्यादा पाप एक दीपक भगवान को कार्तिक में चलाने से नष्ट हो जाते हैं। और ये भी द्वितीयम यानी सेकेंडरी लाभ है उसका। प्राथमिक लाभ क्या है? प्राइमरी, एक दीपक भगवान को प्रेम से जलाने से हृदय में प्रेम और भक्ति का दीपक जलता है, प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है। ये नंबर वन का बेनिफिट है, पापों का नाश होना तो नंबर टू का बेनिफिट है। ऐसे कई बेनिफिट्स हैं, हाँ उसमें कहेंगे तो कथा इसमें आज के समाप्त हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना लाभ कार्तिक में छोटा सा व्रत करने से और एकादा दीपक एक दिन में लगाने से प्राप्त हो सकता है, वो दुनिया में किसी भी व्रत करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं लूट लो, भगवान की कृपा का खजाना लूट लो, क्योंकि इसमें अगर कोई उत्साह नहीं रहेगा तो उतना दुर्भाग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है। इतना भगवान लुटा रहे हैं जिसको, उस पर लेने में भी संकोच है। हाँ, किसी ने कहा 1 रुपया आप भरोगे यहाँ पर तो आपको चर्च गेट पर 1 करोड़ रुपये मिलेगा, तो आप बोलेंगे अरे भाईंदर की लोकल कौन पकड़ेगा, इतने भीड़ में कौन चढ़ेगा, इतनी गर्मी में कौन जाएगा, इतना धक्का मुक्की कौन करेगा, इतनी उधर वहाँ 2 घंटा खर्च कौन करेगा। ऐसा अगर कोई बोलने लगेगा तो हम समझ सकते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति है। 1 रुपया देने पर अगर भाईंदर से चर्चगेट जाने पर 1 करोड़ मिलता है तो हमको उत्साह के साथ जाना चाहिए। जरा सा भी सोचना नहीं चाहिए कि धूप है, गर्मी है, क्या है, सब कुछ मुमकिन मंजूर है, 1 करोड़ मिल रहा है। उसी तरह से जरा सा थोड़ा सा तप करने से अगर इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो रही है, ये तो जीवन का एक सबसे बड़ा लॉटरी है ये। और इतने सारे सालों में, हर साल में आता है ना व्रत कार्तिक का, इतने सारे सालों में आप अगर 1 साल भी व्रत करेंगे तो भी आपको गौलोक पहुंचाने में समर्थ है वो व्रत। तो सोचो अगर हर साल करेंगे आप तो भगवान तो आपके पूरे अधीन हो जाएंगे, आपको गोद में ले लेंगे तुरंत प्रेम से। इसलिए हमने कहा सबसे पहले ही कि हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनको ये सब वस्तुओं का परिचय होता है और परिचय हो रहा है और समझ में आ रहा है, और समझ में आने का तो उसको हम जीवन में उतार भी रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं केवल हरे कृष्णा मंदिर के लोगों के लिए ये व्रत है, बाकी किसको व्रत नहीं है। जो मनुष्य जीव है, हाँ चाहे वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, पाश्चिमात्य है, हाँ गल्फ कंट्री में रहता है उधर जन्म हो गया उसका, या लाइबेरिया में जन्म हो गया है, या तो स्लोवेनिया में हो गया है, पता नहीं कितने देश दुनिया में, युगांडा में हो गया है, कालों का देश है, गोरों का देश है, पीले लोगों का देश है, हर प्रकार के लोग जो मनुष्य के शरीर में है वो अगर गलती से भी इस महीने में दीपक दिखाते हैं। मैंने हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताया कि आप इस महीने में 1 कैंडल जो है हर रोज़ जीसस को मेरी को दिखाना, तो आपको भी लाभ होगा, इतना पावरफुल है। हाँ, जब हवा बहती है ना तो भेदभाव नहीं करती है कि मैं खाली हिंदुओं को हवा दूंगी और क्रिश्चियनों को बाजू में कर दूंगी, उनको हवाई लगाई लगी लगूंगी नहीं मैं, ऐसा हवा बोलती है क्या? तो सूरज का प्रकाश आता है तो कब भेदभाव करता है क्या वो? काले गोरों पर, केवल धनवान लोगों पर ही मैं जाऊँगा? थोड़ा साउंड सिस्टम जरा देख लो। तो उस तरह से भगवान की कृपा जो है, अगर कार्तिक महीने का समय है तो केवल वो हिंदू धर्म के लोगों को जो महामंत्र का जप करते हैं उनके लिए लाभकारी नहीं है ये। जाने अनजाने में अगर कोई इसके व्रत को पालन करता है तो भी उसको वही लाभ होता है जो हमको होने वाला है। एब्सोल्यूट बोलते हैं उसका, एब्सोल्यूट। अग्नि जो है वो जब जलाती है तो देखती नहीं कि वो पसंद की चीज़ जलाऊँ कि नापसंद की चीज़ जलाऊँ, जो भी अग्नि में सब जल जाता है। स्वयं महादेव जी एक कथा बताते हैं कार्तिक व्रत के बारे में, देखो आप सुनो जरा। वो कहते हैं कि कार्तिक महीने में एक चूहा भगवान को लगाया हुआ घी का दीपक था, उसमें से घी खाने को आया। तब रात का समय था तो दीपक तो को बुझने ही वाला था, मतलब पीछे 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 आके वो अग्नि बुझने ही वाली थी। तब वो आकर उसने वो बाती को चूसने का प्रयास किया, थोड़ा घी मुंह में आया उसके तो और उत्साह आया उसको, और थोड़ा चूसा उसने, उस चूसने के प्रयास में बाती थोड़ी ऊपर गई और दीपक प्रज्वलित हो गया। इतना करने से उस चूहे को महादेव जी कहते हैं मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया। देखो आप, वो तो केवल अपना जानवर जीवन में कुछ करने को आया था अपना भोग लेने के लिए, लेकिन इतना करने पर भी उसको पता भी नहीं वो चूहे को क्या ज्ञान हो सकता है। लेकिन अगर जीव है, आत्मा है, उसके हाथ से अगर कोई ऐसा कार्य हुआ है जिससे भगवान का दीपक कार्तिक में जल गया है तो वो उस चूहे को मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। प्रहलाद जी पिछले जन्म में एक भोगी व्यक्ति थे और वो वेश्या से संग करना चाहते थे, तो पाकिस्तान में एक नरसिंह देव का मंदिर था जिस जगह पर था वो, तो वेश्या का भोग लेने के लिए वो जगह उनको अच्छा लगा, उनको मालूम नहीं था मंदिर है करके, चौकोर है, कोई बंद है, कोई एकांत है, कोई आ नहीं रहा है, तो उसने चुन लिया और उस मंदिर को भोग लेने के लिए साफ कर दिया झाड़ू से और पोछे से। वो दिन नरसिंह चतुर्दशी थी और वो कार्य करने से वो अगले जन्म में प्रहलाद जी बने। देखो आप सोच सकते हैं आप। बाय द वे वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था जिस दिन उसने अपने हाथ से नरसिंह देव का मंदिर साफ सफाई किया, उसी के द्वारा वो प्रहलाद जी बन गए अगले जन्म में। क्योंकि भगवान के भक्ति में जो बेनिफिट मिलता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ना एब्सोल्यूट बेनिफिट, कोई भेदभाव नहीं होता है उसके अंदर, नियम से काम होता है। इसलिए हम लोग आपको बता रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कार्तिक व्रत को बिना किए हुए कार्तिक महीने को मत गुजारिए, किसी ना किसी व्रत को लीजिए। और इतना सा हल्का सा व्रत कोई भी ले सकता है, मैं तो कहूँगा इतना अगर आपको कष्ट है तो ऐसे बताओ कि मेरा 16 माला करने के बाद मैं 11 बार हरे कृष्ण मंत्र एक्स्ट्रा बोलूँगा तो भी आपको लाभ है उसका। अगर आप वो 30 दिन करेंगे तो आपको मिलेगा लाभ उसका। और करने के लिए क्या क्या है इस महीने में? एक तो भगवान का नाम आप जब करेंगे तो आपको लक्ष लक्ष गुना अधिक लाभ मिलेगा। एक महामंत्र करेंगे तो आपको लक्ष बार महामंत्र कहने का लाभ इस महीने में मिलेगा, अनेक लक्ष्य। एक माला करेंगे तो अनेक लक्ष्य माला करने का लाभ मिलेगा। सब मल्टीपल में है जो भी आप करोगे, इसलिए अपराध भी करोगे तो उसका भी लाभ या नुकसान अनेक लक्ष्य बार होगा। हाँ, अभी आप लॉटरी लग रही है तो लॉटरी उल्टी भी होती है और सुलटी भी होती है, दोनों तरफ से लगती है। अच्छा काम करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ, और अपराध करेंगे इस महीने में, कोई गलत काम करेंगे इस महीने में, कोई बाहर का व्यक्ति भी मांस खाता है रोज की आदत की तरह, तो ये महीने में मांस खाने से उसको लक्ष्य लक्ष्य बार पाप लगेगा। रोज शराब पीता है 12 महीने, ये महीने में पिएगा आदत की मजबूर होकर, तो उसको एक एक बार शराब पीने से लक्ष्य लक्ष्य बार पीने का पाप लगेगा। जो चीटिंग करता है, जो लोगों को फंसाता है, जो पॉकेट मारी करता है, जो लोगों को लूटता है, वो सबका नुकसान ये महीने में हजारों लाखों बार होगा। इसलिए सावधान रहिए, केवल लाभ मिल रहा है इसलिए लाभ के पीछे में जाइए, अपने हाथ से अपराध भी नहीं होना चाहिए किसी वैष्णव का, किसी जीव का, ये कोई गलत काम नहीं होना चाहिए इस महीने में। तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इस महीने में भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने का बड़ा महिमा है, भगवान को भोग लगाने का बड़ा महिमा है, तुलसी पूजा रोज करने का बड़ा महिमा है, भगवान के मंदिर में दीपक लगाने का महिमा है, दान करने का महिमा है, तीर्थ यात्रा भगवान धाम के, भगवान के धाम में जाकर रहना, वहाँ पर नदी में स्नान करना, इसका महत्व है, भगवान की कथा नियमित रूप से सुनना और पढ़ना, इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, खास करके श्रीमद् भागवत और कृष्ण लीला, हरि लीला, राम लीला सुनने का बड़ा महत्व है। तुलसी पूजा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक एक चीज़ करने से अनंत अनंत लाभ है इस महीने में, तो ऐसा भी नहीं आपको कोई एक ही काम करने की कोई चॉइस ही नहीं दिया है, अनंत चॉइस है आपको, जो पसंद है वो आप कर सकते हो, लेकिन करना है। तो इतनी कार्तिक महिमा की, व्रत की महिमा कहने के बाद हम आपको थोड़ा सा आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो शरद पूर्णिमा का दिन है। इस दिन भगवान ने बीच रात में गोपियों को बुलाया, और उस सार में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसका सार ये है कि गोपियों ने सब कुछ भगवान के लिए त्याग कर दिया, अपना स्वत्व जो है ना, स्वत्व यानी कि अपना जो अहम है वो भी छोड़ दिया उन्होंने। जैसे कि कोई विवाहित स्त्री है, अगर वो विवाह धर्म को छोड़कर और किसी पराये मर्द के साथ चली जाती है, तो उसकी जो चरित्र है वो पूरा नष्ट हो जाता है, चरित्रहीन हो जाती है वो औरत। तो भगवान के लिए जो सबके प्रथम और परम पति हैं, उनके लिए उन्होंने अपना लौकिक जो पातिव्रत धर्म है उसको भी त्याग कर दिया। समझना बड़ा मुश्किल है इसको, ये दुनिया में ऐसे करने से बहुत ज़्यादा व्यभिचारी और चरित्रहीन ऐसे कहा जाता है, लेकिन वही चीज़ जब भगवान के लिए करते हैं वो परम श्रेष्ठ हो जाता है, परम त्याग और परम समर्पण हो जाता है। तो गोपियों ने इस प्रकार का तीव्र समर्पण भगवान के लिए किया, इतना तीव्र त्याग भगवान के आनंद के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि गोपियों ने भगवान के साथ आनंद लेने के लिए वो गए थे, नहीं, वो भगवान को आनंद देने के लिए गए थे। भगवान ने इतनी देर रात में आने के बाद भी उनको बोला, अभी आप चले जाओ, यहाँ इतनी रात मेरे साथ खड़े होना अच्छा नहीं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि जो दुनियादारी के आकर्षण हैं, आसक्तियाँ हैं, वो सब दूर वस्त्र की तरह छोड़कर हम लोग आए हैं। कभी हम लोग जब मैंने ये वस्त्र पहना है ना, अभी मेरे को आते वक्त बड़ा पसीना आया, थोड़ा किधर गंदा भी लग गया वगैरह वगैरह, तब तक मैं पहनते रहूँगा, लेकिन जब घर जाऊँगा तो उसको उतार दूंगा। अगर आप मुझे बोलेंगे दो घंटे बाद, प्रभु जी उसको पहन के दोबारा आपको कथा करनी है, तो मैं उसको दोबारा पहन नहीं सकता, मैं दूसरा वस्त्र निकालूंगा पहनने के लिए। चाहे वही वस्त्र मैंने 6 घंटा पहन के रखा था उसी स्थिति में, लेकिन एक बार शरीर से उतार दिया उसको मैं, तो मैं दोबारा उसको पहनकर दोबारा कार्य नहीं कर सकता, मैं स्नान करके नया वस्त्र पहनूंगा। उसी तरह से गोपियां कहती हैं कि जो वस्त्र हमने, आसक्तियों के सारे वस्त्र हमने उतार दिए हैं, वो आप कह रहे हैं कि दोबारा पहनो, वो मुमकिन नहीं है। अभी जो भी है, प्राण भी त्याग देना है तो यहीं पर देना है। तो भगवान ने हर तरह से उनकी कसौटी ली, और सब कसौटी में वो अव्वल दर्जे में पास हो गए। फिर भगवान ने रासलीला रचाई। रासलीला का मतलब क्या होता है? हमारे सामने दुर्भाग्य से रासलीला का एक गलत दृश्य हमारे सामने होता है हमेशा, लड़के लड़कियाँ, हाँ जवान लड़के लड़कियाँ नाच रहे हैं, उनके काम वासनाएं बढ़ रही हैं, ये हमारे सामने का पिक्चर है। लेकिन रासलीला मतलब जीव और भगवान के बीच में सर्वोच्च आनंद जो है, जो भगवान देते हैं इच्छा से सर्वोच्च आनंद, उसको रास कहते हैं। वो शुद्ध तरीके से प्योरली वो आध्यात्मिक होता है और दिव्य होता है। उसमें शरीर के भावना का कोई लवलेश नहीं है, कोई शरीर की काम भावना का कोई चिन्ह भी, कोई लवलेश भी उसके अंदर नहीं है, आयोटा भी नहीं है, कर्ण मात्र भी नहीं है, 100% प्योर एंड स्पिरिचुअल। ये जो दिव्य आनंद है वो रास के माध्यम से भगवान हर जीव को देते हैं। इसमें उन्होंने गोपियों को दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वही आनंद सभी लोगों को दिया जो संकीर्तन में भाग लेते हैं और संकीर्तन में गाते हैं और नृत्य करते हैं, उन लोगों को भगवान ने वही आनंद दिया जो केवल गोपियों को द्वापर में भगवान ने उपलब्ध कराया था। तो एक ब्रह्मा की रात का समय प्रभु ने पृथ्वी की एक रात में समेट लिया। यहाँ का एक रात समाप्त हो गई, एक दिन कैलेंडर बदली हो गया, लेकिन गोपियों के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के एक रात तक यानी थ्री ट्रिलियन इलेवन बिलियन ईयर्स इतना समय उन्होंने रास का आनंद गोपियों को दिया। और जब वो सुबह उठकर घर लौट गई तो घर के किसी भी व्यक्ति को याद नहीं था कि रात को ये भाग गई थी। हाँ, सासू को छोड़ के, बालक को छोड़ के, पति को छोड़ के, कर्तव्यों को छोड़ के, सब रिश्तों नातों को छोड़ के, सब त्याग करके घर छोड़ गई थी, ये किसी को भी याद नहीं था। मानो कहीं से यहीं से आ गई गौशाला से। इस तरह से उन्होंने घर में सबका स्वागत हुआ और रूटीन कार्य शुरू हुए। और उसके बाद में भगवान ने अनंत बार रास रचाया है बीच रात में। तो भगवान की लीला है ये, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो यही बांके बिहारी जी निकले थे रात को, तो पहरेदार खड़े थे भक्त भगवान उनके। उन्होंने रोका उनको कि मैं मंदिर का पहरेदार हूँ, आप कौन हो? आपको दरवाजा बंद है, किसी को अंदर बाहर जाना मना है। तो ठाकुर जी कहते मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ, इसके मंदिर का रक्षा तुम कर रहे हो। अच्छा, वो दंडवत करते हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हो महाराज? कहते रास खेलने जा रहा हूँ। चलो आप भी चलो। तो उनको भी लेके जाते हैं बूढ़े व्यक्ति को, और एक जगह रुकाते हैं। बोले यहीं खड़े रहो, रक्षा करो दरवाजे की, हम जाते हैं अंदर। और वन में प्रवेश करते हैं रास मंडल में, और रात भर नृत्य करते हैं। और भोर के समय फिर आते हैं बाहर। तो ये बूढ़े व्यक्ति बाहर खड़े हैं, चलो तो चलते हैं वापस। तो रात भर नृत्य करके थक के ठाकुर जी इस बूढ़े व्यक्ति के साथ में अपने मंदिर तक आते हैं। मंदिर को ताला लगा हुआ है, ताले के अंदर से अंदर चले जाते हैं। लेकिन जाने के पहले देखते हैं कि बुड्ढा जो है वो ठंडी से कांप रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं ये खड़े रहो, ये मेरी शाल पहन लो ठंड के लिए। तो अपनी शाल उतार के उसको पहना देते और फिर बंद दरवाजे में से अंदर चले जाके अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही मिनट में पुजारी आते हैं जो रात को बंद करके गए दरवाजा। तो ये बुढ़ा व्यक्ति बोलता है अरे अभी तो आए हैं, अभी मंदिर नहीं खोलना, अभी तो थक कर अभी तो आए हैं। तो रात को जब उसको यहाँ पर रखे गए थे लोग अभी भी समझ रहे थे कुछ थोड़ा सा पागल आदमी है, अभी तो मालूम पड़ा कि पूरा पक्का ही पागल है। वो तो रोक रहा है, झगड़ा कर रहा है, नहीं जाना है आपको अंदर। उतने में उनको नजर आता है कि इसके शरीर पर कोई कीमती शाल है भरी हुई। बोलते ना वो भरे काम करते ना उसके। तो कहते ये शाल कहाँ से आई तुम्हारी? अरे मैंने कहा ना तुमको, वो ठाकुर जी ने मेरे को पहनाया है और वो अभी अभी अंदर गए। तो झट से दरवाजा खोल के, ताला खोल के भगवान को उत्थापन करते हैं शयन से। वो देखते हैं तो वो शाल नहीं है जो रात को उन्होंने चढ़ाई थी भगवान को। तो आके इसके चरणों में गिरते हैं और बोले पूरा बताओ, पूरा क्या हुआ, पूरा क्या हुआ बताओ। तो पूरा वर्णन करता है कैसे बाहर आए, कैसे हम लोग गए, मैं वो रुका रहा, वो रात को बाहर निकले फिर वापस आए। तो उस दिन से बांके बिहारी की मंगल आरती 9:30 बजे होती है। क्योंकि 4:30 बजे तो लौट के आते ना वो, बाकी मंदिर में 4:30 बजे होती है मंगल आरती। तो बांके बिहारी की मंगल आरती ग्रीष्मकालीन 9:30, शीतकालीन 10:00। वो बांके बिहारी निधिवन में प्रकट हुए थे, और निधिवन में आज भी 7 बज गए ना किसी भी सीजन के, तो एक एक जीव जो चींटी भी है वो बाहर निकल जाती है। इतना बंदरों से भरा रहता है दिन भर, वो हजारों बंदर रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ का पर्स गायब, वहाँ देखेंगे तो वहाँ से केला गायब हो जाएगा आपका। इतने बंदर होते हैं, ऐसे शरीर पर आते हैं। लेकिन 7 सूर्यास्त हो गया एक बार तो सब गायब हो जाते हैं वहाँ से। और कोई व्यक्ति अगर अंदर जाता जाने का प्रयास करता है, समझो क्या होता है देखने के लिए, क्योंकि सुना है ना उन्होंने कि भगवान सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक रास रचाते हैं। तो कुछ लोग देखने को जाते हैं, तो जो जाने का प्रयास करता है या तो वो अंधा हो जाता है, या तो उसको पैरालिसिस का झटका आता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने ऐसा उद्दंडता करने का प्रयास किया है। लेकिन आज भी संध्या के समय सब पुजारी वहाँ का अंदर मंदिर है, वहाँ पर भोग लगाते ठाकुर जी को, रात का दूध का भोग लगाते हैं, लड्डू लगाते हैं, बहुत सारी मिठाई रखते हैं। तो सभी जब मंगला होती है तो लड्डू आधा खाया हुआ, दूध आधा पिया हुआ, कुछ व्यंजन टूटे हुए ऐसे बिखरे हुए नजर आते हैं, और वो प्रसाद देने के सब लोग चले जाते हैं। तो वो निधि वन में एक कुआं है, ललिता का कुआं। ललिता को जब प्यास लगी रास में, तो भगवान ने मुरली से कुआं खोदा और मीठे जल का पानी ललिता को पिलाया, ऐसा वो रास मंडल है। फिर उसी रास से भगवान जब अंतर्धान हो गए तो सब गोपियां गाते गाते चली हुई हैं। हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत गाते गाते। तो उसी यमुना किनारे ठाकुर जी को बैठे हुए देखा उन्होंने, राधा रानी का ध्यान करते हुए नीले रंग के ठाकुर जी पूरे गोल्डन कलर के हो गए। ये दर्शन जो है ये भी रासलीला के अंतर्गत ही हुआ है, इसको हम आज इमली तला के स्थान के रूप में जानते हैं, जहाँ पर गोपियों को छोड़कर विरह में भगवान ने राधा रानी का ध्यान किया, तो राधा रानी के ध्यान की वजह से उनका जो सांवला रंग था वो गौर वर्ण हो गया, सुवर्ण कांति वाला। तो हमें सीखना केवल इसी दिन से यही है, समर्पण चाहिए। भगवान अगर किसी का बनना चाहते हैं और बन सकते हैं तो समर्पण से ही बनते हैं। उनके चरणों में अगर अपना अहम, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने शरीर अगर हमने समर्पित कर दिया तो ठाकुर जी हमारे हो सकते हैं, ठाकुर जी अधीन हो जाते हैं उनके। तो ये महीने का जो प्रमुख लीला है वो है दामोदर लीला। हाँ, इसके ऊपर इस महीने का नाम भी दामोदर महीना गिरा है। दाम उदर यानी भगवान के उदर को दाम यानी दोरी से बांध दिया गया था, और सत्यव्रत मुनि ने इसके ऊपर सुंदर भजन लिखा है जो हमने अभी गाया, दामोदर अष्टकम। तो सुंदर सी कथा है ये, भगवान माखन चोरी करते थे, ऐसे कहते हैं कि उनके पास में अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं, पूर्ण ऐश्वर्य वाली। हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजामि। ऐसे वैकुंठ, अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठों में अनंत लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है, उनके पास अनंत संपत्ति है, अनंत ऐश्वर्य है। एक बार प्रेम के झगड़े में, प्रेम की लड़ाई में एक कंगन टूटकर गिर गया था, ऐसे बाकी बहुत सारे अलंकार उनके शरीर में हैं, लेकिन एक कंगन टूट गया था ऐसे कुछ बात बात में। तो वो टूटा हुआ कंगन लक्ष्मी जी ने ऐसे फेंक दिया उसको, तो वो टूटे हुए कंगन पर पूरे भौतिक जगत का इकोनॉमिक्स चल रहा है। कुछ समझ में आया आपको? जितनी भी अर्थव्यवस्था लगती है ना हमको चलाने के लिए, धन संपत्ति लगती है, वो केवल लक्ष्मी जी का एक लक्ष्मी का एक टूटा हुआ कंगन है। और ऐसे बहुत सारे कंगन और हार वगैरह बहुत पहनती हो और ये सारी लक्ष्मियाँ, अनंत लक्ष्मियाँ भगवान के चरणों में सेवा करती है चरणागत भाव से, पाद सेवन की वो आचार्य हैं, भगवान के पाद सेवन में आचार्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे लक्ष्मियों का सारा ऐश्वर्य संपन्ना सेवा और सुविधा छोड़कर भगवान वैकुंठ और वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में आते हैं, और आते वक्त अपना भगवान होने का जो स्थिति है पद वो भी छोड़कर आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, एक बालक बनकर आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, सखा बनकर आते हैं, और क्या करते हैं, इतना बड़ा त्याग करके यहाँ पर आकर माखन चुराते हैं, छाछ चुराते हैं। वो कहते भी हैं कि मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आपके छाछ पान पीने के लिए अवतार ले आऊँ, और जो खुद का है, खुद का बनाओ, खुद का निर्माण किया हुआ है सब विश्व, उसमें भी चोर बनकर आते हैं और चोरी करके वही उनका ही माल चोरी करके खाते हैं, प्रेम की वजह से, प्रेम की भूखे ना वो। वो छाछ में कुछ नहीं है, छाछ में प्रेम भरा हुआ है गोपियों का, माँ का, उसको आस्वादन करने के लिए आते। तो रोज रोज वो गोपियाँ सब आके कंप्लेन करती हैं, देखो हमारे घर पे आते हैं मटका तोड़ देता है, नहीं मिलता है मटका तो हमारे बालकों को चिमटा निकालता है, और अगर कभी नहीं मिलता है तो बालकों को सोते हुए बालक को पलने में कान में ठंडा पानी डालता है, बालक को चिमटा निकालता है, पलने से उतार के बालक को नीचे रखता है, और नहीं तो नहीं कभी तो ऐसा करता है दूध वो मक्खन नहीं मिलेगा तो पेशाब करके चला जाता है जमीन पर घर के। क्या संस्कार है इसके, ऐसे आके कंप्लेंट कर रहे हैं वो। और कंप्लेंट करने का अजीत तरीका है, कैसे मालूम है, यशोदा माई अगर यहाँ खड़ी है, समझो आप में से कोई कंप्लेंट कर रहा है किसी माँ को आपके बेटे के बारे में, तो कैसा कंप्लेंट करते हो, आंखों में देख कर कंप्लेंट करते हो, ऐसा उंगली दिखा के करते हो उस व्यक्ति की ओर जिसको बोलना है आपको। ये लोग क्या कर रहे हैं, यशोदा माई यहाँ खड़ी है और यहाँ देख के कंप्लेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर देख कंप्लेंट? अरे कंप्लेंट का तो बहाना है, लाला के दर्शन करने हैं इसलिए वो आए हैं, वो माखन चुराते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, और माखन जब बनाते हैं तो भी सोचते यही है कि आज मेरे घर पे लाला है और मेरा माखन चुराए, सब लोग यही गा गा कर सोच सोच कर प्रार्थना करते हुए मक्खन बना रहे हैं। तुम्हें कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मक्खन चुरा के जब चला जाता है तो उनको रहा नहीं जाता है, अरे दर्शन नहीं हो रहा है ना, तो फिर कंप्लेंट का बहाना लेकर नंद भवन में आते हैं, और महल के अंदर देखते देखते कंप्लेंट करते हैं यशोदा मई यहाँ खड़ी है, और वो कह रही है अरे तुम इतनी बार कंप्लेंट लेके आती हो, कभी एक बार सबूत तो लेके आओ, कभी तो मुझे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरे घर में मैं कमल की खुशबू वाली घास 100 गायों को खिलाती हूँ, चुने हुए मेरे पास लाखों गाय हैं, उसमें 100 गाय को मैंने चुन के रखा है, उनको मैं केवल वो कमल की खुशबू वाली घास खिलाती हूँ, उसके द्वारा उसके दूध जो निकलता है उसको भी कमल की खुशबू आती है, और जब वो दूध मैं जमाती हूँ और उसको मंथन करती हूँ, जो मक्खन निकलता है उसको और तीव्र है ना, अभी कम हो गया ना वो, तो और तीव्र कमल की खुशबू आती है, वो कमल की खुशबू वाला पद्मगंधा मक्खन जो है लोणी नवनीत मैं मेरे काना को खिलाती हूँ, वो भी यहाँ तक खिलाती हूँ। हाँ वो मना करता है, बस बस अभी बहुत हो गया, इतना खिलाती हूँ और वो करके भेज देती हूँ, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आपके घर में जाके चोरी करके खाएगा वो, भूख तो होनी चाहिए ना चोरी, समझो आप कभी मिठाई का दुकान में भेज दिया, जो चाहे वो खाओ, लेकिन पूरा खाना खिला के भेज दिया तो कैसे खाएंगे, एक दूसरा खाएंगे उसके बाद में कैसा खा सकते हैं, अरे खाओ खाओ 50 तरह की मिठाई है, नहीं खा सकते हैं, तो इसको पेट भर के भेजा है मैंने, जो मना करते करते भेजा है, तो कैसे मानो कि तुम्हारे घर में आके चोरी करके खाता है। इसलिए बार बार आती हो, बार बार कंप्लेन करती हो, एक बार तो रंगे हाथ उसको लेके आओ। तो दिवाली का दिन था, तो वो ऑफकोर्स बहुत लंबी लंबी कहानी है उनकी, कैसे गोपियों ने उनको पकड़ के लाया काना भगवान माँ यशोदा के पास, और कैसे भगवान ने वो लेके आने के बाद लेने के जरा सा पहले भेष बदल लिया, वो गोपियों का पुत्र बन गए वो। हाँ क्या क्या किया भगवान ने, गोपियाँ हैरान हो गए, अरे उसको पकड़ के लाया था, लेकिन नंद भवन में पहुँचते पता नहीं मेरा बेटा कैसे बन गया वो। फिर उसको अपने बेटे को जो अपने हाथ में अभी है, जो कृष्ण को लेके आए थे, जो नंद भवन पहुँचते ही उसका खुद का बेटा बन गया, तो ले तू कहाँ से आ गया इधर, चल चल घर चल, ऐसे उसको लेके गया, बाहर जाते वो कृष्ण बन गया और बोल रहा है देखो मैंने कहा था मत पकड़ना मुझे, पछताओगे तुम, नहीं मानी, अभी तुम्हारा बालक बना हूं, अगली बार तुम्हारा पति बन जाऊंगा, ध्यान रखना। ऐसा एम्बरेसमेंट, इतना संकोच भगवान ने किया। लेकिन दीपावली के दिन क्या हुआ, भगवान बाहर से खेल के आए बालक, और यशोदा माई जो है वो दही का मंथन कर रही थी। हाँ कमल के खुशबू वाला दही जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? यस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको इसके लिए गोलोक में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो सकता, कितना भी एसेंस डालो कमल का फिर भी वो कमरे में नहीं आएगा। थोड़ा सा आएगा बोतल में, लेकिन ये सब मुमकिन है, हाँ लेकिन ये भौतिक दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो वो मंथन हो किया जा रहा है, माँ गीत गा रही है, जो कल लीला हुई थी उनकी उसके बारे में गीत गा रही है, इतना परफेक्ट सीन है, इतनी मग्न है वो, भाव में मग्न है, और लाला के लिए मंथन कर रही है मक्खन निकालने के लिए, उतने पीछे से आता है और वो पल्लू खींचता है, तो माता समझ जाती है कि उसको स्तनपान करना है, तो तुरंत वो मंथन करना बंद करती है और उसको अपने गोद में लेती है और स्तनपान कराती है। स्तनपान कराते कराते छोटे छोटे दांत भी आ रहे हैं उनके, उसका दर्शन भी करती है और बड़ा अद्भुत आनंद का अनुभव करती है। अभी आप ऐसे माताएं बहुत सारी, उनको पता होगा कि बालक को स्तनपान कराने का आनंद जो है ना बहुत अद्भुत होता है, उसको योगी अवस्था कही गई है। सामान्य स्त्री भी सब दुनिया को भूल जाती है जब बालक दूध पीता है, इतना आनंद होता है प्राप्त उसको, उसका वात्सल्य की पूर्ति हो जाती है, सब दुख भूल जाती है। अब ये तो सामान्य माता तो है नहीं, यशोदा माता है, बालक सामान्य बालक तो है नहीं, श्री कृष्ण भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर बालक बनकर आए हैं आनंद देने के लिए, और वो दुग्ध प्राशन कर रहे हैं, तो यशोदा के आनंद की सीमा कोई पहचान सकता है क्या, कितना आनंद हो गया उसको, और उस आनंद में मग्न रहती है वो, तभी भी भाव सेवा का है, ऐसा नहीं कि हाँ इसको दूध पिलाने से मुझे खुशी होती है तो मैं इसको दूध पिलाती रहूँ तो मुझे खुशी मिलती रहे, ये स्वार्थ भावना नहीं है वहाँ पर, उसको आनंद मिले, उसको भूख लग रही है, उसकी सेवा हो जाए, ये भाव से दूध पिलाया जा रहा है, और साथ साथ में जो दूध निकालकर कुछ हिस्सा जो है वो चूल्हे पर रखा है, जिससे आगे जाकर संदेश मिठाई बर्फी पेड़ा बनाना है, वो भी कान्हा के लिए बनाना है, तो कान्हा कभी दूध पीता है, कभी मक्खन खाता है, कभी दही खाता है, कभी छाछ पीता है, कभी लस्सी पीता है, कभी संदेश खाता है, कभी बर्फी खाता है, कभी पेड़ा खाता है, जो उसको लगे तब सब तैयार होना चाहिए। तो कुछ दूध वहाँ पर रखा हुआ है, अचानक वो दूध जो है ना वो उबल कर अग्नि में प्रवेश करने लगता है बाहर निकल कर, क्योंकि दूध भी सजीव है। दूध क्या सोच रहा है, अगर माता के स्तन का दूध प्राप्त हो रहा है तो हमारी वैल्यू क्या है उसके सामने। हमको तो आग में कूद कर आत्महत्या करना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि माता का अगर स्तन का दूध प्राप्त हो रहा है इतना श्रेष्ठ, तो हमें कौन प्राप्त करेगा, कान्हा हमारे पास क्यों आएगा। ये सोचकर दूध भी आग में कूद रहा है, लेकिन जब दूध आग में गिरता है तो बदबू आते ना उसके, आप कहीं भी रहेंगे बाथरूम में तो भी आपको तुरंत भागेंगे, अरे ये दूध उबल गया। वैसे मैया को तुरंत याद है, अरे मैंने वो संदेश बनाने के लिए दूध उबालने को रखा था, वो अभी उबल रहा है और दूध पानी में अपना अग्नि में गिर रहा है। तुरंत बालक को स्तन से अलग करके नीचे रख के वो भागती है और उसको नीचे उतार कर रखती है। तो बालक को बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे छोड़कर जा ही कैसे सकती हो। बोले कुछ ना कुछ अभी करना चाहिए, माता को भी सबक सिखाना चाहिए कि मेरी सेवा को बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहिए। लेकिन माता गई क्यों, वो भी उनकी सेवा है, वो भी दूध बहुत कीमती है जो लाला के लिए मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसका। तो ये वो जो रवि है ना, रवि मंथन करने वाले जो क्या कहते हैं उसको, मथनी, उसको मटके से निकालता है और उसको फोड़ देता है। कुछ जगह पर लिखा है कि पत्थर लेके पत्थर से फोड़ता है, कुछ जगह लिखा है मथनी से फोड़ता है। एनीवेज ठाकुर जी उसको फोड़ देते हैं तो सारा छाछ जो है वो जमीन पर फैल जाता है। तैरता हुआ मक्खन जो है कुछ निकाल के खाता है और कुछ हाथ में लेते लेते वो जो छाछ जमीन पर गिरा हुआ है उस पर अपने नन्हे नन्हे कोमल पैर रखते हुए आगे चला जाता है। जहाँ छाछ समाप्त होता है, जमीन शुरू होती है, वहाँ पर छाछ के चरणों के चिन्ह निकलते हैं और वो अगले कमरे में जाता है। अगले कमरे में देखता है कि अच्छे अच्छे मटके लगे हुए हैं, बहुत सारे मंथन करके बनते हैं ना नए नए मटके, तो उसको लटका के रखे हुए हैं। तो वो देखता है क्या अभी बहुत ऊंचे हैं, इधर उधर देखता है तो उखल दिखाई पड़ती है, जो उखल पे खड़ा रहता है और वो मक्खन निकाल के ऐसे सबको बुलाता है। सब उसके साथी जो है ना, मधुमंगल, सखा, श्रीदामा, उज्जवल, सुबल, सब भाग भाग के आते हैं, हर प्रकार के सखा उनके, सबको बुलाता है और खुद भी खाता है, अपने हाथ से उनको भी खिलाता है। देख सकते हैं आप ग्वाल बालों का कितना भाग्य है। सुखदेव जी प्रश्न करते हैं भागवत में कई बार कि क्या तपस्या की है इन बालकों ने, कौन से जीव है ये जो ठाकुर जी के दिव्य कर कमलों से खुद उसके हाथ से मुंह पे जला जा रहा है उनका घी, वो भी उनका झूठा भी है और उनके हाथ से उनको खिलाया जा रहा है। इतना परम भाग्य तो योगियों को, ध्यानियों को, तपियों को प्राप्त नहीं है। उनके चरणों से निकलने वाले अनंत जो प्रभावत किरण है, वो एक किरण का भी दर्शन नहीं होता है हजारों जन्म तपस्या करने के बाद भी। ऐसे दुर्लभ भगवान जो है स्वयं अपने हाथ से इन ग्वाल बालों को मक्खन खिला रहे हैं, खुद भी चाट रहे हैं और अपना जिह्वा का महाप्रसाद उनको भी खिला रहे हैं और सब मुंह खोल खोल के खा रहे हैं, सबका पेट भर जाता है। फिर बंदरों को बुलाते हैं, फिर बंदरों को भी खिलाते हैं। तो सोचते हैं बंदर कितने भाग्यवान हैं, कौन है ये बंदर। अरे वही बंदर है वो जो प्रभु रामचंद्र की सेवा में रामायण में थे, प्रभु ने उनको प्रेम से वृंदावन जिला में बुलाया है उनका ऋण चुकाने के लिए, है ना। इन सब बंदरों ने कितना कष्ट किया सीता जी को वापस लाने के लिए। तो भगवान ने वो ऋण चुकाने के लिए, उनका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको अपनी कृष्ण लीला में भी जन्म दिया ब्रज में, और हर समय बुला बुला कर उनको अपने हाथ से मक्खन खिलाया। उतने में मैया जो है वो किचन से बाहर आती है, आगे उनको स्तनपान कराना था, लेकिन क्या देखती है, अरे पूरा मटका फूटा हुआ है, पूरा छाछ सब जगह फैला हुआ है, मक्खन सब गायब है, हाँ मथनी गिरी हुई है, मटके टूटे हुए हैं, टूटा हुआ है, और उसमें से वो उसके बाहर नन्हे कदम के चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं छाछ के। तो उसको फॉलो करती हुई एक डंडा लेती है हाथ में और जाती है अगले कमरे में, क्या देख रही है, सब लोग मग्न हैं, ग्वाल बाल, बंदर, कन्हैया एकदम मग्न हैं, सब लूट रहे हैं उसको। लेकिन बंदरों का मुँह जो है वो दरवाजे की ओर है और इसकी पीठ दरवाजे की ओर है, तो ये पीठ करके सबको खिला रहा है, लेकिन जिनका मुंह दरवाजे की ओर है बंदर से देखते हैं कि पीछे डंडा लेकर मैया आई है। जैसे उनके चेहरे का भाव बदलता है, कन्हैया मुड़ता है, अबाउट टर्न, देखता है मैया पीछे खड़ी है और सब लोग एक क्षण में भाग जाते हैं, सब तुरंत भाग जाते हैं। तो ये उसके पीछे लगती है, रुको 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 कन्हैया रुको लाला रुको, तुमने आज बहुत उद्दंडता की है, माखन चुराया है, अब तक मैं विश्वास नहीं करती थी लेकिन आज तुमने घर पे ही चोरी करके ये साबित कर लिया है कि तुम ही वास्तव चोर हो और सब गोपियां सही है, रुको तुम रुको मैं तुमको दंड दूंगी। भाग रही है वो और कान्हा भाग रहे हैं क्योंकि यशोदा मैया तो बड़ी बुजुर्ग थी, आपको पता है कि वो बड़े दिनों बाद उनको बालक की प्राप्ति हुई थी, बहुत बुजुर्ग मतलब 75-80 ईयर्स हो गए थे, नंद बाबा के 85 साल हो गए थे। अभी भी नंदगांव के लोगों को नंद बाबा को बरसाने के लोग दाने देते हैं, देखो देखो बुढ़ापे में भी कितना शौक है बालक जन्म करने का, ऐसे नोक झोंक में ताने देते हैं। तो थोड़ी सी बुजुर्ग है ना, शरीर भी थोड़ा भारी है उसका, ये तो बालक है बहुत दूर से भाग रहा है। अभी आप उस सीन को कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति के नाखून से निकलने वाले अनंत किरणों से एक किरण भी कोई योगी पकड़ नहीं सकता है, उसको पकड़ने के लिए मैया डंडा लेके भाग रही है और वो भयभीत होकर उसके आगे भाग रहा है। साक्षात मृत्यु भी जिसको भयभीत होती है उसको देखकर, उसके बारे में विचार कर कर, चंद्र तारे उनके भय से चलते हैं, सब पृथ्वी और आदि सब देवता लोग उनके आदेश से उनके भय से अपना कार्य करते रहते हैं, जो मूर्तिमान भय जो है उनसे भयभीत है, वो भयभीत होकर हाँ हरे कृष्णा वो भयभीत होकर भाग रहे हैं और मैया उनके पीछे भाग रही है। तो उनके सर पे बहुत श्रृंगार के फूल लगे हुए हैं, वो फूल सोच रहे हैं अरे हमारी क्या योग्यता है इनके सर पे रहने की, हमको तो चरणों में रहना चाहिए उनके, कि जो किसी को लाभ लभता नहीं है, किसी को प्राप्त नहीं होता है उसको डरा कर भगा रही है ये और वो भाग रहा है डर कर। इतनी महान यशोदा मैया हमारी, तो पहले तो ठीक था हमने उनको बालों का श्रृंगार शोभा बढ़ाने के लिए बालों पर अपना स्थान लिया था, लेकिन अभी नहीं लेना चाहिए, हमको उनके चरणों में आना चाहिए। सब फूल जो है बालों से चरणों में गिरने लगे उनके वंदन करने के लिए, माता आप धन्य हो। सब देवता लोग देख रहे हैं अरे क्या सीन है, तो जिसको देखकर सब पापी लोग भाग जाते हैं, राक्षस लोग डर जाते हैं, इनका मृत्यु का कारण है ये सब। 6 दिन के समय पर उन्होंने इतनी 12 मील बड़ी राक्षसी का वध किया था पुतना नाम के, ऐसे व्यक्ति को ये मैया डंडा दिखाकर डराकर भगा रही है। वो सब लोग वंदन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। उसके बाद मैया रुको 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 करके उनको सांस फूलती है उनकी, तो मैया का प्रयास देखकर मैया को बहुत घुमा घुमा कर फिर लाला को दया आती है, करिए मैया को बहुत भगाया मैंने आज, तो फिर वो तय करते कि पकड़ा जाए चलो, तो वो पकड़े जाते हैं, फिर पकड़ के वो बहुत डांटती हैं, तो वो लाला क्या कर रहे हैं डर रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, हाँ आँखों से आंसू आ रहे हैं, आँखों को मल रहे हैं हाथ से, नहीं नहीं मैया मैंने नहीं चुराया मुझे मत दंड देना, तो डंडा दिखाती है तो और कांपने लगते हैं। तो मैया को लगता है कि ज़्यादा बालक को डराना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डर गया तो फिर खाना ही छोड़ देगा, मतलब डंडे का तो काम है कुछ, उसका कुछ ड्यूटी तो है इसके लिए मैंने पकड़ा है, लेकिन ज़्यादा दंड देने से वो बालक के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो डंडा फेंक देती है क्योंकि देख रही बालक बहुत ज़्यादा ही डर रहा है। फिर कहती है ठीक है डंडा तो फेंक दिया लेकिन दंड ज़रूर दूंगी तुमको आज। उखल बुलाती है मतलब सखियों को बुलाती है, अब तक तो सबको पता चलता है ना कि मैया ने पकड़ लिया है, तो कुछ सखियाँ ताली पीट रही है अच्छा हुआ अच्छा हुआ, हमको हमेशा ठेंगा दिखा के भाग जाते हो, हम तुमको पकड़ नहीं पाते हैं कोशिश करने के बाद भी, अभी तुम अच्छा हो गया पकड़े गए। तो कुछ सखियाँ जो है बड़ी आनंद से उसको हंस रही हैं, कुछ सखा रो रहे हैं क्योंकि अरे हमारे कान्हा को पकड़ा, बड़े रो रहे हैं मैया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सखा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, बोले हमेशा माखन चोरी तुम करते हो, प्लानिंग तुम्हारा होता है, नेता तुम होते हो और हम लोग सब माखन खाते हैं, तुम पहले खाते हो लेकिन पकड़े हम जाते हैं और तुम भाग जाते हो, आज अच्छा हुआ तुम पकड़े गए, हम देख रहे हैं पूरा सीन। इसलिए ऐसे बहुत सारे सीन है उधर, अलग अलग लोग हंस रहे हैं, कुछ टीका कर रहे हैं, कुछ मजा कर रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, करो करो। तो मैया कहती है उखल को लेके आओ, सखियाँ उखल को लेके आती हैं, तो लाला को कहती है कि उखल ने तुम्हें इस चोरी करने को सहायता की है इसलिए तुम दोनों गुनहगार हो, दोनों को साथ में बांध देती हूँ, लाओ लाओ सब लोग दूरी लेके आओ। अभी गाय के गौशाला में कैसा होता है ना, वो पीछे के दो पैर जो है ना वो बांध देते हैं, इतनी सी दूरी होती है ताकि कभी कभी तो दूध निकालते समय टोंग करके दूध निकालने वाले को लात मारती गाय, इसलिए जो कुशल दूध निकालने वाला होता है ना, वो दूध निकालने के पहले दो पीछे के पैर जो है बांध देता है, ताकि वो दोनों पैर से कैसे किक मारेगी, इसलिए वो मारती नहीं है। फिर वो ऐसे बहुत सारी दोरियाँ हर गौशाला में होती हैं, तो बहुत सारी दोरियाँ लेके आए गए, उसकी लंबी दोरी बनाई गई और उखल को और भगवान को बांधने का प्रयास किया गया। जब भी वो प्रयास किया और गांठ मारने का समय आया तो दो उंगली वो कम पड़ती थी, फिर और दोरी मंगाई और दोरी जोड़ दिया उसको और जोड़ी लंबा करके फिर वापस जब पेट के पास में बांधने को आया तो फिर दो उंगली कम। तो यशोदा मैंने कहा जितनी भी गोकुल में दोरियाँ है सारी दोरियाँ लेके आओ। तो हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि उस दिन दोरियों का उत्सव हो गया नंद भवन में, रोप फेस्टिवल। क्योंकि सारी दोरियां जितनी ब्रज में थी वो सारी लाई गई नंद भवन में यशोदा माता की सेवा में। लेकिन सारी दोरियां को जोड़कर भी जब पेट के बांधने का, जब दोरी को गांठ बांधने का समय आया तो दो उंगली छोटी। तो माता को समझ में आ रहा है क्या रहस्य है ये, इसका पेट तो इतना सा है, उखल भी इतनी सी है, दोनों मिलके भी इतना सा है, लेकिन जितना जोड़ जोड़ के मील 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 लंबी दूरी हमने बांध ली फिर भी दो उंगली कम कैसे पड़ती है, ये क्या जादू क्या है ये। लेकिन ये सब करके 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 माता जो है ना गांठ मार मार के गोल गोल घुमा घुमा के उसके कपाल प्रदेश पर पसीना आया, श्वेत बिंदु इकट्ठा हो गए, थक गई मैया, लेकिन प्रयास कर रही है बांधने का फिर भी। तो हमारे दामोदर जी कृष्ण भगवान को दया आती है, बोले मैया ने बहुत मेहनत किया, पहले तो बहुत भाग भाग के मेहनत किया तो मैं पकड़ने के लिए राजी हो गया, अभी मुझे बांधने के लिए इतना प्रयास कर रही है, इतना प्रयास कर रही है। ठाकुर जी को कौन बांध सकता है बताओ, किसकी पकड़ में नहीं आते वो, सबको नचाते हैं वो लेकिन खुद कभी किसी पकड़ में नहीं आते, तो उसको कौन बांध सकता है। जब वो खुद चाहेंगे तब वो बांध सकते हैं। तो उन्होंने अभी तय कर लिया कि अभी मैं बांधा जाता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं कि ठाकुर जी ने जब निर्णय लिया कि अब मैं बांधा जाऊंगा, आई विल गेट बाउंड, तो उनका क्या भाव था, उनका एक ही भाव था, सभी योगियों को तपस्वियों को धानियों को बताना चाहते थे वो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उससे मैं बंधने वाला नहीं हूँ, मैं बंधता हूँ तो केवल प्रेम से। देखो मैया मुझे प्रेम से बांध रही है, वो कोई योगी नहीं है, कोई ध्यानी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई फिलोसोफर भी नहीं है तत्वज्ञानी भी नहीं है वो प्रचार करने वाली, वो एक सीधी सी माँ है जो मुझ पर प्रेम करती है। तो या तो तत्वज्ञान का बखान करने से या तपस्या करने से या ध्यान करने से कोई कष्ट व्रत करने से कहते हैं मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, और हमने तो कहा था आपको व्रत करना चाहिए और अभी कह रहे हैं कि व्रत से प्राप्त नहीं होते हैं। नहीं, उसका रहस्य यह है कि व्रत करो लेकिन प्रेम से करो, रोते रोते मत करो कब समाप्त होगा ये महीना ये सोचकर मत करो प्रेम से करो। मैया मंथन कर रही है, दूध को गाय को दूध निकाल रही है, कितनी मेहनत कर रही है, प्रेम से कर रही है, गीत गाते हुए मग्न होकर कर रही है वो, ये सोच नहीं रही है क्या परेशानी है, रोज दूध निकालो, रोज दही जमाओ, रोज मंथन करो दही दूध को, फिर जमाओ, फिर मक्खन निकाल के संभाल के रखो, फिर ऐसा करो, फिर उसको खिलाओ, फिर उसका बर्फी बनाओ, कितना मेहनत है ये लड़के के लिए, बोर हो गया अभी, अभी किसी और को रखे मुझे रिटायर होना है, ये नहीं सोच रही हो, उसको अनंत आनंद प्राप्त हो रहा है उसके अंदर प्रेम से। ऐसे ना वो मक्खन जब कर रही है ना मंथन, आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। बोलो, यशोदा मैया का ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया के आंखों से कभी भी अश्रु समाप्ति नहीं हुए, आनंद के अश्रु से भरे रहते थे उनके अश्रु हमेशा, आंखों से हमेशा प्रेम से टपकते। जैसे गाय की भी, जब गाय भी चलती थी वृंदावन की तो उसके थन जो है ना वो जमीन पर लगते थे, इतने बड़े प्रेम से भरा हुआ दूध था उनके अंदर, और कृष्ण की याद जब आती थी उनको दिन रात तो एक एक बूंद खून टपकता था और पूरी ब्रज की भूमि जो है वो दूध से गीला हुआ करती थी। इसे प्रेम कहते हैं, इसमें मेहनत नहीं होती है, मेहनत होने पर भी मेहनत लगती नहीं है वो। जब बच्चा पतंग उड़ाता है ना संक्रांति के समय, वो थकता है क्या कभी, भोजन भी उसको याद नहीं आता है, दिन रात पतंग ही उड़ाना है उसको, वो मेहनत है लेकिन मेहनत का अनुभव नहीं है उसके अंदर। उसी प्रकार से माता मेहनत तो कर रही है लेकिन मेहनत का अनुभव नहीं है, लेकिन लाला जी को दया आती है कि बस अभी ज़्यादा और कष्ट नहीं करवाना है, देखो देखो कपाल पर श्वेत बिंदु जमा हो गए, तो तब वो बंध जाते हैं अपनी इच्छा से। सबको ऐलान करते हैं तथा प्रेम भक्ति, हाँ केवल प्रेम भक्ति होने पर ही मैं उनका अधीन हो जाता हूँ। तो वो दो उंगलियां जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, बार बार दो उंगलियां क्यों कम पड़ रही थी। भगवान को प्राप्त करना है तो प्रयास करना जरूर चाहिए, प्रयास तो साधना है हमारी, हमारी मेहनत है। वो 100% जब पूरी होगी ना, तो ये प्रयास जब 100% पूरा होगा तो भगवान की कृपा आएगी, और जब कृपा और प्रयास का जो मिलन होगा तो भगवान बंदे जाएंगे। हम समझते हैं कि हम अपने मेहनत से भगवान को बांध रहे हैं, हमारी जो 100% मेहनत जो है, जो 100% पूरा होने के बाद भी वो तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जो हमारी 100% है इसलिए भगवान देखते हैं कि इसने पूरा तो दिल लगा दिया अपना, पूरी मेहनत तो कर ली इसने। तो जब हमारी 100% पूरी होती है, हमने पूरी अपनी मेहनत और शक्ति लगा दी उसके अंदर, तो भगवान कृपा देते हैं, और भगवान की कृपा से ही फिर वो कार्य सिद्ध होता है। भगवान की कृपा को आकर्षित करने का क्या कार्य है, क्या कारण है, 100% एफर्ट, अपने प्रयास में कोई कंजूसी नहीं करना है, भगवान की सेवा में 100% देना चाहिए कभी भी। वो जो गिलहरी थी राम भगवान का सेतु बनाती थी ना, क्या चांस था अगर गिलहरी अकेली अगर खड़ी थी वहां पर, तो कितने हजारों युग बीतते फिर भी सेतु नहीं बनता और सीता जी वही रहती अशोक वाटिका में। लेकिन फिर भगवान ने जाकर फिर भी हनुमान जी को टोका और गिलहरी पर कृपा किया, उसके ऊपर उंगली रखा और 3 उंगली के निशान उसके शरीर पर पैदा किए। क्यों किए? वो गिलहरी की मेहनत को कोई वैल्यू नहीं था, कुछ रेती के दाने ऐसे फेंक रही थी वो सेतु में। अरे सेतु तो 100 यजन दूर था, इतना बड़ा, करोड़ों करोड़ों बंदरों को ले जाने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए वो, इतना बड़ा सेतु में अगर कुछ मिनटों के बाद में कुछ रेती के दाने फेंके जा रहे हैं तो कब रेतु सेतु बनेगा, वो कब पूरा होगा सेतु। लेकिन फिर भी राम ने उस पर कृपा क्यों किया? क्योंकि उसने अपना 100% जो है वो प्रदान किया, कुछ बचा के रखा नहीं कि थोड़ा ही करूंगी ज्यादा नहीं करूंगी, इतना सब एनर्जी कौन वेस्ट करेगा। 100% भगवान की सेवा में लगाया, यश मिले या ना मिले, मेरे मेहनत से सेतु बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मेरा सहभाग मैं 100% दूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। तब भगवान ने कृपा किया उस पर, हनुमान जी ने रोका उसको, उसको थोड़ा सा टोका भी, भगवान ने हनुमान को टोका, उन्होंने कहा तुम्हारे पास पहाड़ उठाने की शक्ति मैंने दी है, तुम उसका 100% यूज कर रहे हो, उसके पास कुछ रीति के दाने फेंकने की शक्ति मैंने दी है, वो भी उसका 100% दान दे रही है मेरे सेतु में, तो तुम कैसे बड़े हो गए, वो तुम्हारे जैसे ही है मेरे दृष्टि से। तो ये जो 100% मेहनत है ना, ये हमारे तरफ से होना चाहिए, वो भी प्रेम से होना चाहिए। पसीना भी आया ना तो प्रेम कम नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए भाई बहुत हो गया, कब कब समाप्त होगा ये महीना और कब समाप्त हो गया ये प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल के भगवान चाहते हैं, हाँ आपके हाथ पैर बुद्धि जो भी आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है वो भगवान का है, आपका क्या है उसके अंदर, हमारा क्या है उसके अंदर, हमारी केवल भावना है जो आपके खुद की ओरिजिनल है, जिसको कोई भी कह नहीं सकता कि ये मेरी है, वो भावना जो है उसके वो भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। और वो भाव आपका, आप कितने भी, हम कितने भी तुच्छ क्यों ना हो, उस भाव को वो स्वीकार करते हैं, उसी को लेने के लिए आते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी पर हावी हो जाते हैं, उसी के अधीन हो जाते हैं। तो भगवान फिर बंद गए, बोला अभी यहीं खड़े रहना है, कोई खेल वेल नहीं आज, मुझे बहुत सारे काम है, चुप रहो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। तो उसको अकेले बांध कर छोड़ कर चले जाते हैं कमरे में। तो लाला सोचते हैं मुझे बांध दिया, हाँ क्या समझती है मैया अपने आप, मैं भी सबक सिखाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा ना जिंदगी भर पछताएगी मुझे आज बांधा। तो यहाँ वहाँ देखते हैं तो वो घुटने के बल चलने लगते हैं, कमरे में जहाँ बांधा था वहाँ से बाहर आते हैं, बाहर में कई कमरे हैं वो छोड़कर बाहर आते हैं, फिर बरामदे में आते हैं, फिर आंगन में आते हैं, फिर आंगन से बाहर जाते हैं, घर की सीमा के बाहर जाते हैं, खेत में जाते हैं, आंगन में जो खेत है तो दो बड़े पेड़ खड़े हैं, यमल अर्जुन पेड़ खड़े हैं। संक्षेप में उसकी कहानी यह है कि कुबेर के पुत्र थे वो, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे, है ना, धन संपत्ति वाले बाप होते तो बेटे बहुत उद्दंड हो जाते हैं। तो ये शराब पीकर नग्न होकर नदी में दैवी मतलब देवताओं की स्त्रियों के साथ में वहां पर आनंद ले रहे, प्राइवेट में ले सकते हैं, लेकिन वहां पे नारद मुनि आते हैं, वहां से बाय द वे गुजरते रहते हैं वहां पर। तो वो जो स्त्रियां थी वो तुरंत नारद मुनि को दूर से देखते हैं, तुरंत अपने वस्त्र पहनकर छुप जाते हैं, और ये दोनों जो है नशे में चूर वैसे ही नग्न अवस्था में झूल रहे हैं यहां पर। नारद मुनि सामने आके तो भी ऐसे ही झूल रहे हैं नशा में, तो नारद मुनि को दया आती है उनके ऊपर। अरे कुबेर जैसे श्रेष्ठ देवता के पुत्र है, इनको सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये भटक जाएंगे। तो उनको शाप देते हैं, इतना ही नंगे होकर नशा करने का शौक है, जाओ वृक्ष बन जाओ। तुरंत उनकी नशा है ना वो खाड़ करके उतर गई, जितनी भी चढ़ी थी। वो दारी जो पीते ना उसको नींबू का पानी देते कभी कभी, तो नींबू का पानी देने से शराब उतर जाती है, वैसे उनके एक क्षण में उतर गई। जैसे ही शाप सुना कि पेड़ बनने वाले हैं, तुरंत नशा उतर गई। बोली महाराज माफ करो, गलती हो गई हमसे, कुछ शाप दे दो, कुछ कंसेशन डिस्काउंट कुछ करो। नारद मुनि को दया आती है, वो कहते हैं ठीक है अभी वृक्ष बनने का शाप दिया वो तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वृक्ष बनोगे गोकुल के आंगन में बनोगे, अभी तो बहुत टाइम है, द्वापर के अंत में कृष्ण आने वाले हैं, बालक बनकर लीला करने वाले हैं, तब तक खड़े रहो जाकर। लेकिन जब बालक बनकर भगवान आएंगे द्वापर में, तब आपको उनकी बाल लीलाओं का दर्शन होगा, आपके आंखों के सामने उसी घर में वो लीला करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, और एक दिन वही आपका उद्धार करेंगे। तो ये जो पेड़ बनने की जो बात है ना, थोड़ा सा आज के दुनिया में बहुत लागू है वो। पेड़ कौन बनते हैं? जो अपने शरीर की नुमाइश करते हैं, अपने शरीर को नग्न रखकर या कम से कम कपड़ा पहनकर अधिक से अधिक शरीर को नग्न रखकर लोगों को दिखाते हैं, वो उनको हम फिल्म स्टार कहते हैं। वो टॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड सब में काम करते हैं, हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड और लॉलीवुड, लाहौर हाँ मुंबई और मद्रास और हॉलीवुड। आखिर में क्या होता है, सब जाकर वुड बन जाते हैं, लकड़ी। हाँ ये जोक लगता है आपको, लेकिन ये सत्य है। अगर हमारे में से भी कोई अगर यहाँ पर से जाते आने के बाद में कॉलेज में इधर उधर घूमते समय कम से कम कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर की नुमाइश का अगर करने लगते हैं, सावधान रहो सब लोग, उसका अंजाम पेड़ बनने में है। क्योंकि पेड़ कोई कपड़ा नहीं पहनता है, और सालों साल हजारों लाखों साल भी एक ही जगह खड़ा रहता है और नग्न अवस्था में अपना दर्शन देते रहता है। जिनको अपने शरीर का नुमाइश करने का शौक है, पेड़ बनने को तैयार हो जाओ। और अगर भगवान के पास जाना है, अच्छे तरह वस्त्र पहनो, सब पूरी तरह से शरीर को ढको और इंसान की तरह सुसंस्कृत तरह से पद्धति से अपने वस्त्र पहनो। तो फिर ये भगवान पहुंच गए वहां पर, और बिल्कुल ठीक से दोनों पैर पेड़ों के बीच में जाकर उन्होंने उखल को अटकाया और फिर उखल को खींचा। जब उखल को खींचा तो उसके बल से दोनों पेड़ जो है वो धड़ाड़ से गिर गए, यमुनार्जुन पेड़ जो है वो जमीन पर गिर गए, और उसमें से दो देवता प्रकट हो गए, नल कुबेर और मणिग्रीव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सोचो आप, अगर नारद मुनि ने कहा होता जाने दो ना मुझे क्या करना है कुबेर के पुत्रों का, करने दो अपने को जाए, मुझे क्या पड़ी है, अगर गए होते तो वैसे ही रोज शराब पीकर नंगा नाच करते वो। तो इनका शाप नहीं है, ये वरदान है, वरदान। उनकी इतनी पतित अवस्था में से सीधे पेड़ बनाया, लगा तो कितना बड़ा शाप दिया भयंकर देखो, लेकिन वो पेड़ बनाया भगवान के आंगन में, जो भगवान के चरणों के किरण भी किसको दिखते नहीं है, लाखों जन्म तपस्या करने के बाद वो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, वो भी बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, साधारण लीला नहीं कर रहे, बाल लीला का दर्शन कर रहे। तो फिर प्रकट हो गए वो, उन्होंने भगवान का स्तुति किया। तब तक तो उनकी पूरी मति शुद्ध हो गई थी, पेड़ का जन्म प्राप्त करने के बाद में, दंड प्राप्त करने के बाद में भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, और नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा किया आपने शाप कर दिया कि हमको वृक्ष बनाया, वो पंखे को इस तरफ करो। तो फिर वो अपनी अपनी प्रार्थना करके वो गायब हो गए। और यहां पर क्या हुआ, जो धड़ाम करके वृक्ष का आवाज आया ना गिरने का, उससे वो सब लोग भाग के आए, वो खेत में नंद बाबा थे वो भाग के आए, घर से मैया भाग के आई, सब सखियां यहां से आई, सखा आए, सब लोग भाग भाग के आए, कितनी बड़ी आवाज कहां से हुई। तो क्या देखते हैं, दो जो फेमस पेड़ थे उनको सबको पता था उन पेड़ों के बारे में, वो पेड़ गिरे हुए हैं जमीन पर, उसके बीच में अपने कोमल से इतने से काना खड़े हैं, उनको किसी ने उखल से बांध दिया है। नंद बाबा आके पूछते हैं किसने बांधा इसको, कितना डेंजरस चीज है ये नटखट तो है ही, और बांध के किसी ने द्वारपाल भी रखा नहीं उसके ऊपर निगरानी के लिए, छोड़ के चले गए। तो कुछ ग्वाल बाल बता रहे हैं, अरे नहीं वो हम लोग देख रहे थे वो काना ऐसे ऐसे आए उसको खींच खींच के, और ये पेड़ को उन्होंने खींच कर गिरा दिया और उसमें जो दो भरो देवता प्रकट हो गए। तो नंद बाबा का विश्वास नहीं, बोले बालक तो ऐसे कुछ बकते रहते हैं, क्या है उनको मालूम। लेकिन कुछ बालकों ने देखा था दो देवता प्रकट होकर सुंदर सुंदर गीत गाए उन्होंने, हमारे काना को प्रार्थना किया उन्होंने, कौन है हमारा काना, देवता ने प्रार्थना किया उनके लिए, ये बता रहे हैं उनको। लेकिन नंद बाबा को यकीन नहीं हो रहा है, उनको ये प्रश्न है बांधा किसको, बांधा किसने इसको। तो सब लोग ने फिर दब दब के कहा कि यशोदा मैया ने बांधा इसको। तो देखते हैं उनको, यशोदा मैया रो रो कर फूट फूट कर रो रही है। फिर बाबा तुरंत छुड़ाते हैं उसको। पहले तो बालकों ने भी, मैंने कथा आपको संक्षिप्त में बताई है, बड़ी लंबी कथा ये, पहले बालकों ने भी कोशिश किया छोड़ने के लिए, लेकिन जो मैया ने बांधा है वो बालक कैसे छोड़ सकते हैं, असफल रहे वो। लेकिन मैया और बाबा का भाव एक ही है, वात्सल्य। बाबा ने छोड़ने का प्रयास किया, तुरंत छूट गई वो गांठ, और छोड़ के तुरंत लाला को मुक्त किया। लाला ने जाके बाबा को गले लगाया, आलिंगन दिया, तो कह रहे हैं कि मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। बोलो क्यों, उसने मुझे दंड दिया और झूठ मूठ का नाटक करके रो रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तुझे स्नान कौन कराएगा, बोले तू बाबा। तुझे मक्खन कौन खिलाएगा, तू बाबा। तुझे वस्त्र कौन पहनाएगा, तू बाबा। तेरे लिए कौन करेगा, वो कौन करेगा, तो सब कुछ तू करेगा बाबा। और मैया ये सुन सुनकर रो रही है वहां पर कि हर एक मेरी सेवा के बारे में मेरे पति देव मेरे बालक को पूछ रहे हैं कि ये कौन करेगा जो मैं करती थी, और वो सब मेरा बालक कह रहा है कि मैं उनसे ये सेवा नहीं लूंगा, आपसे लूंगा। तो मैया सोच रही है कि मेरे जीवन को अर्थ ही क्या बचा है, मेरी सारी सेवा, एक भी सेवा मुझसे लेने को लाला तैयार नहीं है, तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, मुझे तो जीना ही नहीं है अभी, ये सोच रही है। उतने में बाबा कहते हैं, देखो मैया देखो कितनी रो रही है, अभी तो वो शायद बहुत नाराज हो गई है क्योंकि अभी तुम कुछ सेवा ही नहीं दोगे, देखो देखो उसको देखो तो सही, देखने को भी तैयार नहीं। फिर बहुत मनाते हैं, बोल देखो देखो। तो जब मैया को देखते हैं तो बाबा का छोड़कर सीधे मैया के पास भाग के उसको आलिंगन लगाते हैं, गले लगाते हैं। मैया बोलते ठीक है भाई चलो माफ़ कर ला मुझे, मैंने अपराध किया तुम्हारा, मैं कभी नहीं बांधूंगी तुम्हें। ऑलरेडी पछतावा कर रही हो, कहाँ से मैंने बांधने की बुद्धि मुझे हुई आज, कभी तक नहीं बांधा, आज भी एक बार भी क्यों मैंने बांधा उसको, इतना क्रोध मैंने क्यों किया उसके ऊपर, कितना संकट में डाला उसको, अगर वो पेड़ उस पर गिर गए होते तो मैं अपने आप को माफ़ कर सकती थी क्या, इतना पछतावा पहले से कर रही है, ऊपर से वो सेवा नहीं लेने को बोल रहे हैं, तो जीवन ही समाप्त हो गया। भक्त के लिए जीवन क्या होता है, भगवान के सेवा के बिना भक्त का जीवन शून्य है। हमको लगता है कैसे, जिस दिन लगेगा ना उस दिन भगवान हमारे हो जाएंगे, अभी हमको लगता नहीं। बाय द वे हम लोग काम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, बाय द वे कुछ समय भक्ति भी करते हैं, एक आधा घंटा माला भी फेर लेते हैं, कार्तिक में एक आध दीपक भी चला लेते हैं। लेकिन आज अगर दीपक चलाने का चांस निकल गया, कोई ट्रेन में थे वगैरह, तो ज़्यादा बुरा लगता नहीं, आके खाना खा के सो जाते हैं, कोई सेवा नहीं हो पाई तो कोई दुख नहीं होता है, ठीक है कर लेंगे उसमें क्या है। लेकिन भक्त वो है जब सेवा छूटती है तो उसको लगता है आत्महत्या कर लूँ मैं, ये सब बेकार है, मेरा परिवार मेरा धन दौलत मेरा काम मेरा कर्तव्य सब यूजलेस है अगर भगवान की सेवा में नहीं कर सकता। जीवत शव समान, वो व्यक्ति जिंदा होने के ऊपर भी शव समान है, मुर्दे के समान है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, जिसके जीवन में कृष्ण की सेवा नहीं है, जिसको कृष्ण का आकर्षण नहीं है, जिसको कृष्ण पर प्रेम नहीं है, जो कृष्ण की सेवा में आनंद नहीं लेता है, वो जीवत शव समान मुर्दे के समान है, सब मुर्दे डोल रहे हैं यहाँ पर। यशोदा माई को लगा कि जीवन ही समाप्त हो गया, और जैसे कृष्ण ने आलिंगन दिया लगता है जीवन वापस आ गया। जब पांडवों को मिलने के लिए भगवान जब वो लाक्षागृह में जलते जलते बच गए और उनको बचाया गया और वापस लौट के आए, तो भगवान जब उनको द्वारका से मिलने गए तो ऐसे वर्णन आता है कि पांडवों को ऐसे लगा कि मुर्दे में जान आ गई। जब कृष्ण आए और आलिंगन दिया तो पांडवों को लगा कि अभी हमारी जिंदगी शुरू हो गई दोबारा। तो एक जीव के लिए, हाँ भक्त के लिए नहीं, भक्त तो हम बाद में बनते हैं, लेकिन जीव की स्थिति में जब हम है, जीव के लिए जीवन कृष्ण है, अगर कृष्ण नहीं है तो जीव का जीवन में निरर्थक है व्यर्थ है। ये भावना जब हमारे अंदर आएगी तब कृष्ण हमारे हो जाएंगे, तब हमारा जीवन जो है वो जीवन कहलाने योग्य हो जाएगा, जब भगवान हमारे होंगे। इस तरह से ये लीला यहाँ पर समाप्त होती है। और वो जो डोरी है उसको भक्त लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो डोरी उस पेट को बांध रही है जिस पेट के अंदर सारे विश्व समाये हुए हैं, है ना। भगवान के कितने अवतार हैं, उनमें से एक है महाविष्णु, कई अवतारों के बाद में महाविष्णु आते हैं, फिर महाविष्णु के अवतार हैं गर्भोदक साई विष्णु, उनके पेट से वो कमल निकलता है और वो कमल ब्रह्मा लोक है, और वो डेट जो है उसका, उसके अंदर सारे 13 लोक भरे हुए हैं, 7 स्वर्ग लोक, 1 पृथ्वी लोक और 6 नरक लोक। ये 14 भुवन का कमल जो है इनके पेट से निकलता है, वो इन्हीं के सबके अवतार है वो, तो इनका पेट जो है वो सारे निर्माण का आगार है, सारा निर्माण पेट से निकलता है। उस पेट को कौन बांध सकता है, केवल माता ही बांध सकती है। तो वो माता भी धन्य है और वो डोरी भी धन्य है जो भगवान को पेट को स्पर्श किए, उन्होंने भगवान को पेट को स्पर्श करके वहाँ बिलक चिपक के रहने का भाग्य प्राप्त हुआ उस डोरी को। डोरी को सबने प्रणाम किया, बोलो महाप्रसाद करके डोरी लेके गए घर पे सब लोग। उस डोरी को हम सब भी प्रणाम करते हैं, सत्यव्रत मुनि प्रणाम करते हैं जो डोरी भगवान के उदर को चिपक के रही है कुछ समय के लिए, हाँ बांध भी दिया उसको, जो किसी के बंधन में नहीं आते हैं उसको इस डोरी ने कुछ समय के लिए क्यों ना हो बांध के रखा था। और वो मैया को भी प्रणाम है, तो बाद में कहते हैं वो राधा रानी को भी प्रणाम है जो इन पर प्रेम करने वाले पर अनन्य कृपा करती है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगे आप। तो ये सारे कार्तिक व्रत का जो महिमा है उसको फल देने वाले आप हो, हम आपकी कृपा चाहते हैं। क्या सेवा कर सकते हैं हम, क्या भाव को ला सकते हैं, कहाँ से भावना आएगी, वो तो सब आप ही देती हो। सारा भाव भावना और सेवा भाव जो भी है, प्रेम भक्ति जो भी है, वो आप देती हो। कब दोगी राधा रानी, कब कृपा करोगी, क्योंकि जब आप कृपा करती हो तब ये भाव प्राप्त होता है। जब ये भाव से हम सेवा करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक होता है, धन्य हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। कब कृपा करोगी, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो ये लीला जो है बहुत मधुर बहुत सुंदर लीला है, इसका चिंतन करने के लिए ये महीना है। माता क्या करती है, कल क्या हुआ वो सब सखियां और सखा लोग आके बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ वन में, ऐसा हुआ इधर, ऐसा हुआ उधर, ऐसा हुआ। अगले दिन उस कथा का गीत बनाकर माता गाती है और मंथन करती है। उस समय वो कल जो हुआ था हम लोग सॉरी बता रहे हैं, वो तो गीत बनाकर गा रही है उसको। ब्रज का यही रहस्य है, सारे ब्रजवासी गण जितने भी अपने अपने घर में दूध निकाल रहे, गाय का मंथन कर रहे हैं, मक्खन इकट्ठा कर रहे हैं, झाड़ लोट कर रहे हैं, गोबर निकाल रहे हैं, कंडे बना रहे हैं, हाँ दूध गर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं घर में, वो सारा काम करते हुए मन में केवल कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। मंथन कर रहे हैं तो कंगन बज रहे हैं, कमर काचनी बज रही है, कुंडल हिलडुल रहे हैं माता के, और उसी म्यूजिक में वो गीत गा रही है। और सेवा भी मन से हो रही है और चिंतन भी ऐसे ही तीव्रता से हो रहा है। ये ब्रज का जीवन है, ऐसा नहीं केवल ब्रज में ही होता है, हमको वहां जाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं नहीं, अब यहां पर भी ऐसे मग्न होकर भगवान का चिंतन करते करते अपना काम कर सकते हो। जैसे कोई प्रेमी लड़का है प्रेमी लड़की है, कॉलेज जाते हैं, एग्जाम होती है, क्या क्या काम करते रहते हो, लेकिन जब प्रेम होता है लड़का लड़की को तो किताब खोलने पर भी वो उसका ही चेहरा नजर आता है, उसका ही विचार आता है, हाँ स्नान कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं, कुछ झाड़ू लगा रहे हैं, तो उसका ही विचार मन में आ रहा है। होता है ना दुनिया में भी ऐसा, या किसी का प्रेम नहीं हुआ है, शादी होने वाली है, मैया ने अभी शादी फिक्स कर ली है और 24 मई को शादी है, तो कैसे दिन रात उसी का विचार मन में आता है, उसको भी इसका, इसको भी उसका, तो बोलना नहीं पड़ता है, अभी उसका चिंतन करो, अभी स्नान करोगे, अभी भोजन बनाओगे, झाड़ू लगाओगे, उसका ही ध्यान करो, ऐसा बोलना पड़ता है क्या, कभी कभी ध्यान मत करो ज़्यादा ऐसा बोलना पड़ता है, इतना भी ध्यान मत करो, काम पे भी ध्यान किया करो, अभी एग्जाम भी आ रही है, पास भी होना है शादी करने के पहले, तो वो स्वयं स्फूर्त है ना। वैसे स्वयं स्फूर्त ध्यान चिंतन भगवान का होना चाहिए, क्योंकि हमारे सच्चे प्रेमी प्रियकर भगवान है। जब उन पर दिल लगेगा और खाते पीते उठते चलते बोलते काम करते अगर उनकी याद आती रहेगी तो हमारा जीवन धन्य है। जितना चिंतन हम माया का करते हैं, जितना चिंतन भोग का करते हैं, उतनी मात्रा में अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो और कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। संत लोग बताते हैं, आज की तारीख में हम सबको पता है कि हमारा मन माया में कितना आसक्त है, कहाँ कहाँ अटका हुआ है, धन में कितना अटका हुआ है, पत्नी में, पति में कितना अटका हुआ है, प्रॉपर्टी में कितना अटका हुआ है, इसमें कितना अटका हुआ है, सबको पता है। उतना ही अटैचमेंट अगर कृष्ण के प्रति निर्माण हो जाए तो और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वही परिपूर्णता है। तो ये कार्तिक महीना आप सबको उसकी बधाई हो, और इसी तरह से मग्न होकर आप भगवान के लीलाओं का ध्यान करो। भगवान की सारी बाल लीलाएं उन्होंने इसी महीने में की हैं, ये प्रधान लीला है बाल लीला, लेकिन सारी बाल लीलाएं अधिकतर इसी महीने में संपन्न हुई है। और किसी व्यक्ति को भी जब वो कोई कार्य करता है ना, जब वो बालक होता है ना, तब उसके जो होता है ना कार्यकलाप करते हैं बालक, बहुत आकर्षक होते हैं। काला कलूटा बालक भी होगा ना, तब जो बालक होता है तब उसके नन्ही नन्ही तोतली तोतली बोल सुनकर किसी का भी दिल आकर्षित हो जाता है। एकदम कुरूप भी होगा बालक, लेकिन जब बालक होता है तो बड़ा आकर्षक होता है, बालक होना ही एक आकर्षकता है। अगर परम सौंदर्यवान भगवान बालक बनकर आते हैं तो उनका बालक होकर जो कार्य करते हैं वो कितने आकर्षक होंगे, कितने मनमोहक होंगे, कितने दिल को लुभाने वाले होंगे। तो ये कृष्ण भगवान परम भगवान जब बालक बनकर यशोदा के और नंद बाबा के आंगन में आते हैं तो उनके भाग्य को बढ़ाते हैं। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, उन्होंने गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को, माता पिताओं को, सबको आनंद के सागर में डुबा दिया। संत लोग नंद बाबा का भाग्य का सराहना करते हैं। एक संत ऐसे बोलते हैं, मैं कृष्ण भगवान की पूजा भी नहीं करता, मैं नंद बाबा की पूजा करता हूँ, क्योंकि उसके आंगन में पर ब्रह्म बालक बनकर रेंग रहे हैं। इतने भाग्यवान और महान कौन हो सकते हैं जिसके आंगन में परम भगवान भी बालक बनकर रेंग रहे हैं, और बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, उनको खिलाया जा रहा है बालक के रूप में, वो अधीन है उसके पूरे। इतने भाग्यवान महान नंद बाबा है तो मैं उनकी पूजा करूंगा, मेरे लिए दैवत वही है। इस तरह से भगवान ने बालक बनकर, भगवत्ता को छोड़कर, सारा ऐश्वर्य छोड़कर, सामान्य बनकर नंद बाबा को, यशोदा माई को, गोपियों को, गोपों को, सबको इतना आनंद में सागर में डुबो दिया। यही ब्रज की आनंद है, ब्रज का आनंद है। इसका चिंतन भी करना हमारे लिए परिपूर्ण है। भले हम वहाँ नहीं रहे, वहाँ जाने के योग्य नहीं रहे, लेकिन उसका चिंतन भी करते रहेंगे सोच सोच कर, वही आपकी जीवन की परिपूर्णता है। इस चिंतन में अगर कोई शरीर छोड़ता है सीधे भगवत धाम चला जाएगा, भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको कार्तिक महीने की बधाई, दीपदान की बधाई, और सब लोग दिल से प्रेम से कष्ट न पाते हुए सब व्रत को करना और भगवान का दिल जीत लेना, ताकि भगवान सब आपके हो जाए, भगवान आपके हो जाए, आप भगवान के हो जाए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्याम श्री वृंदावन धाम की, श्री कार्तिक मास महोत्सव की, श्री दामोदर भगवान की, श्री राधा रानी की।